कृणन्ति गायन्ति कृणन्ति अभिशशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवच्छिदं जनाः तदेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रभा उपप्रथमं पदाम्बुजम्। तो कुंती महाराज ने प्रार्थना कर रहे हैं, तब श्रीमद् भागवतम है, भागवत के प्रथम स्कंध के आठवें अध्याय में श्लोक संख्या 36 है, जिसमें कुंती महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो निरंतर क्या करते हैं, आपकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं और उसका कीर्तन करते हैं और दूसरों को इस तरह देखते हुए आनंद लेते हैं, निश्चित रूप से वो आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हैं। और ऐसा दर्शन प्राप्त करने से क्या होगा कि दोबारा भव सागर में हमें आना नहीं पड़ेगा। तो ये महत्व है कृष्ण कथा का, ये कृष्ण कथा वास्तव में हम सबके लिए औषधि है और हमारा जीवन है, इसमें बीतना चाहिए। प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास इतने अनमोल ग्रंथ हैं, हमारे पास उपलब्ध है, और अगर हम लोग तो इसमें ध्यान से पढ़े ग्रंथों को और समय बिताए तो फिर हमारे पास किसी और बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं होगा। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, सदैव इस कृष्ण कथा का लाभ उठाना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें सब कुछ दे गए हैं, वो सब कुछ यहाँ है, वो तभी पता चलेगा जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे। और इसलिए इन किताबों को हम लोग पढ़े, ध्यान से पढ़े और कृष्ण कथा का पूरा लाभ उठाए। तो हम कुछ वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे पिछले दिनों में, और यह अध्याय भी वृंदावन के बारे में है, लेकिन ये प्रसंग तब का है जब बलराम जी वापस लौटते हैं वृंदावन। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए थे, वृंदावन से मथुरा ले गए थे, और उसके बाद कई वर्षों के बाद फिर से बलराम जी वापस वृंदावन आ रहे हैं। तो ये उस समय का प्रसंग है, क्योंकि हमने सोचा कि पहले वृंदावन में जो लीलाएं घटित हुई है उसको पहले हम चर्चा करेंगे भागवत से पहले, क्योंकि आप बार बार कहते हैं वृंदावन है, वृंदावन की लीला का हम लोग श्रवण करें और उसका थोड़ा लाभ उठाए। तो इस अध्याय का शीर्षक मैंने जैसे बताया बलराम का वृंदावन जाना। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे गुरु श्रेष्ठ, माधव परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए उत्सुक भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। नंद गोकुल की यात्रा की यानी कि अभी इस समय गोकुल में थे। हमने कल जो लीलाएं बताएं कल परसों, वो लीलाएं तब की थी जब गोकुल से स्थानांतरित हो चुके थे नंद महाराज, माता यशोदा, कृष्ण बलराम और वहां जो और हरिकर थे वो सब नंद गांव चले थे, तो तब की लीलाएं बताए थे। लेकिन ये जो लीला है तब की है जब बलराम जी गोकुल वासियों से मिलता है, गोकुल नंद गोकुल की यात्रा, मतलब कहने का आप ये है गोकुल विशेष रूप से वो स्थान गोकुल नहीं है, यानी कि उस स्थान में गाय को चला जाता उसको भी गोकुल कहा जाता है। ऐसे गोलोक वृंदावन को यहाँ पर गोकुल वृंदावन कहा जाता है। तो हालांकि वो स्थानांतरित हो चुके थे नंद गांव में, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोकुल कहा जा रहा है, गोकुल की यात्रा की। जैसा कि यहाँ पर तात्पर्य बता रहे श्री जी गोस्वामी ने इंगित किया है हरिवंश पुराण और हरिवंश विश्व पुराण में भी बलराम के शिव नाम जागरण बन हुआ है। गौरव के साथ बलराम मैत्री का स्मरण करके भगवान बलराम भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही ब्रज गए। वृंदावन के खुले भोले वासी दिन से भगवान कृष्ण अन्य तरफ जाकर रहने लगे हैं, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को सांत्वना देने वहां गए थे। तो बलराम भी सांत्वना देने आए थे और श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि शुद्ध प्रेम महासागर हमारे कृष्ण भी व्रत क्यों नहीं गए। मतलब यहाँ प्रश्न उठाया गया कि बलराम जी तो आपने सातों का देखे, इससे अच्छा कि ये नहीं होता कि कृष्ण स्वयं वापस आ जाते, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका उत्तर विश्वनाथ मिठा होते हैं, यदुमय सोचा भगवान की प्रेमिका या शुद्ध लालमय प्रेम के लिए प्रसिद्ध है और उनके माता पिता यानी माता यशोदा आनंद महाराज उनके प्रति अति वत्सल है, भगवान कृष्ण शुद्ध प्रेम की वशीभूत है। अगर यदि वे उन्हें देखने जाते हैं तो फिर वह किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आएंगे, मतलब अगर वापस चले गए कृष्ण तो फिर आप तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इससे कोई संदेह नहीं है कि माता यशोदा आनंद महाराज और वहां जो गोपियां हैं वो कितना विरह महसूस कर रहे होंगे। और जब कृष्ण वहां पर जाएंगे तो उनके प्रेम को देखकर उनके भय को देखकर कृष्ण फिर वापस नहीं लौटेंगे हमारे पास। तो भगवान शुद्ध प्रेम की वशीभूत है, अतः यदि उन्हें देखते हैं तो फिर वह किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आएंगे। इस विचार से यदि उन्हें भगवान हरि को जाने से रोका तो जानते थे कि वे उन लीलाओं के आदि हो जाते हैं जिनमें वह ब्रजवासियों के नित्य वर्तमान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इस कारण से श्री कृष्ण इस समय यहां पर नहीं पहुंचे, तो बलराम जी को जाने की अनुमति मिली और वो जाकर क्या करेंगे, ब्रजवासियों को सांत्वना देंगे। दीर्घ काल से वियोग की चिंता से सहज उठने के कारण गोपों तथा उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। जब बलराम जी वहां पहुंचे तो सखाओं ने गोपों ने और उनकी पत्नियों ने बलराम का आलिंगन किया। तब बलराम जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें सुखियों द्वारा बलराम का हर्ष के साथ सत्कार किया। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं, हम बलराम जी का बार बार शुभकाम करते हैं, यद्यपि वह नित्यानंद है, यहाँ नित्यानंद का यह है कि वो हमेशा आनंद प्रदान करने वाले हैं। और वैसे भी नित्यानंद कहा जा सकता है कि वो भी यही करते हैं, तो उनका कार्य यही है, उनकी सेवाओं के आधार पे, उनके गुणों के आधार पर, उनके नाम है भगवान के नाम पर है, उनके गुणों के आधार पर है, उनकी लीलाओं के आधार पर। इस जगत में कोई अगर लक्ष्मीपति होता है भिखारी का नाम भी लक्ष्मीपति हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं होता है। जो नाम होते हैं, जो नाम होता है उसी प्रकार के गुण भी होते हैं। तो किंतु ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें वेदना का अनुभव हुआ, अतः भगवान कृष्ण को छोड़कर भी उन्हें देखने गए। मतलब ब्रजवासियों की वेदना उनका विरह देखकर वो कृष्ण को छोड़ने गए। कोई पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बलराम जी कृष्ण को छोड़ के गए, वो तो हमेशा बचपन में कृष्ण के साथ ही जाते थे, उनकी रखवाली करते थे, आप क्यों छोड़ के चले गए, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो उसका उत्तर यहां पर देगा कि ब्रजवासियों की वेदना को देखते हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि कृष्ण के लिए कृष्ण को छोड़ना पड़ता है। जैसे दामोदर लीला में देखते हैं कि दूध उबल रहा है दूसरे कमरे में और माता यशोदा उस समय कृष्ण की सेवा में लगी हुई है और अचानक उन्होंने क्या किया, वो मंथन कर रहे थे कई मंथन और कृष्ण जो है पार करने की चुप थे। ऐसे में क्या देखा माता यशोदा ने कि दूध उबल रहा है दूसरे कमरे और उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया एक आए और दूसरे कमरे में चले गए। तो प्रभुपाद ने वहां लिखा है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि देखा जाता है कि भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण के लिए वो कृष्ण को छोड़ते हैं, क्योंकि वो दो दूध है किसके लिए, किसके लिए दूध है, वो है तो कृष्ण के लिए ना। दूध से दही बनेगा, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन बहुत प्रिय है श्री कृष्ण को। तो दूध अगर उबल के निकल जाएगा भाव रतन से तो फिर कृष्ण के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, तो ऐसे दूध को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से जो है माता यशोदा कृष्ण छोड़ देते हैं, प्रभुपाद जी इसी कारण से भगवान छोड़ते हैं, किसके लिए गए, कृष्ण के लिए कृष्ण को छोड़ा। लेकिन ये एक भारी विचार है, वास्तव में भगवान के जो भक्त है कृष्ण को कभी नहीं छोड़ते हैं, शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान की लीलाएं सदा वास करते हैं। भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का धाम विराजमान रहता है। तीर्थी गुरुवती तीर्थाने महाराज युधिष्ठिर ने विदुष को देखते हुए बोला, विदुष जी वापस लौटे तीर्थाटन के पास, तो आप क्या करते हैं कि तीर्थ स्थान को भी पवित्र करते हैं, आप तीर्थ स्थान को भी पवित्र करने वाले हैं, या जिस स्थान में आपके चरण पड़ते हैं वो स्थान भी तीर्थ स्थान में जाते हैं। ऐसे हमारे श्री प्रभुपाद जहां श्री प्रभुपाद ने कदम रखे पूरे पृथ्वी में, वो सभी स्थान क्या हमें तीर्थ स्थान में। तो नंद तथा यशोदा ने प्रार्थना की, हे दशार वंश, हे ब्रह्मांड के स्वामी, तुम तथा तुम्हारे छोटे भाई कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करो करते रहो। ये कहकर उन्होंने श्री बलराम को अपनी गोद उठा ली, उनका अलिंगन किया और अपने नेत्रों के आंसुओं से उन्हें सिद्ध कर दिया। तो इस पर श्री जी को स्वामी टीका दिए। नंद भाई यशोदा ने श्री बलराम से प्रार्थना की, तो अपने छोटे भाई सहित हमारी रक्षा करते रहो। इस तरह उन्होंने एक बात के लिए सम्मान व्यक्त किया कि वह बड़े भाई हैं, और उन्होंने ये दिखाया कि वह उन्हें अपने ही पुत्र के रूप में कितना मानते हैं। किसको? बलराम जी को। जितना हम माता यशोदा कृष्ण को मानती है उतना बलराम जी को भी उतना ही मानते हैं। और कई बार ये देखा जाता है कि जब संतान उम्र में बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता पिता फिर अपने बच्चों पर निर्भर होने लगते हैं। तो ये भी एक तरह का प्रेम है, ये भी वात्सल्य प्रेम है। यहाँ पर ऐसा ना सोचा जाए कि माता यशोदा, अब क्योंकि अब स्तुति कर रहे हैं कि आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, रक्षक हैं, पालक हैं, तो वो अब बलराम जी के ऐश्वर्य को जान गए हैं या कृष्ण के ऐश्वर्य को जान गए हैं, इस कारण वो ऐश्वर्य से प्रभावित हो रहे हैं, इस कारण से नहीं, बल्कि किस कारण से कि आप हमारी रक्षा करें। आप छोड़ के हमें चले गए, मेरे छोड़ के चले गए, कृष्ण भी हमें छोड़कर चले गए, तो हम तो अकेले रह गए ना, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं छोड़कर चले जाते हैं, कोई अमेरिका चले जाता है, कोई यूरोप चले जाता है, तो ये भी एक प्रेम का लक्षण है यहाँ पर। तो बलराम जी ने अपने से बड़े ग्वालों के प्रति समुचित सम्मान प्रकट किया, जो छोटे थे उनका आदर सत्कार किया, मतलब जो बड़े थे उनको प्रणाम किया और छोटे थे उनको आदर सत्कार किया। वायु मैत्री की मात्रा तथा पारिवारिक संबंध के अनुसार हरेक से हंसकर हाथ मिलाकर स्वयं मिले। तत्पश्चात विश्राम करने के बाद उन्होंने सुखद आसन ग्रहण किया और सारे लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। उनके प्रति प्रेम से रुद्र वाणी से उन वालों ने, जिन्होंने कमल नयन कृष्ण को सर्वस्व अर्पित कर दिया था, अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य के विषय में पूछा। बदले में बलराम ने ग्वालों की कुशल मंगल के विषय में पूछा। मतलब बलराम जी वापस आए हैं तो सबसे मिल रहे हैं, घर वालों से मिल रहे हैं, मित्रों से मिल रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को आदर सत्कार दे रहे हैं, सादर सत्कार कर रहे हैं। तो तरह तरह से बलराम जी अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। बलराम देखिए, भगवान के भक्ति ही वास्तव में व्यक्तिगत सेवा नहीं करते भगवान की, बल्कि भगवान भी अपने भक्तों की व्यक्तिगत सेवा करते। ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, असंख्य जीव है ब्रह्मांड में, उन सभी जीवात्माओं का श्री कृष्ण से व्यक्तिगत संबंध है और श्री कृष्ण भी ऐसे जीवात्माओं से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। ये देखिए भगवान की महानता, यानी कहने का अर्थ ये है, ये है वैष्णवता। वैष्णवता का मतलब ये है कि प्रत्येक भक्त से हमारा आदान प्रदान होना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, ये वैष्णवता है। हम मायावादियों की तरह छुप के नहीं बैठ सकते कमरे में, इसलिए भागवत का श्रवण भी करना है तो भक्तों के संग में रहकर एकांत में रहकर, एकांत में रहकर लाभ नहीं मिलता है, भक्तों के संग में रहने का बहुत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आगे बताया जा रहा है, गौरव ने कहा कि हे राम, हमारे सारे संबंधी ठीक से तो है ना,
तो राम शब्द का उपयोग इसलिए किया गया यहाँ पर, जो राम क्या करते हैं अपने प्रियजनों को, अपने पार्षदों को, परिकरों को आनंद प्रदान करते हैं, इस कारण से वो राम है। और क्योंकि वो आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं इसलिए बल शब्द का उपयोग किया है, और दोनों शब्द मिला दिए जाते हैं तो वो बलराम। हे राम हमारे सारे संबंधित ठीक से तो है ना, और हे राम क्या तुम सभी लोग अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अब भी हमें याद करते हो? अब तो द्वारका चले गए हो, महलों में रहते हो, द्वारकाधीश है वो, है ना, आप उनके बड़े भाई हो, बहुत आपके पास धन है, 16,108 महल बना लिए उन्होंने वहां जाकर, 16,108 पठानियां हैं द्वारकाधीश की, हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया ब्रज में, हम तो साधारण से सरल से ब्रजवासी हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा धन नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, हमें याद भी करते हैं कि नहीं? वो ऐसे बहुत ही जगत में नहीं होता, देखिए आध्यात्मिक जगत का ही विकृत रूप है, जितने भी चलचित्र बनते हैं वो सब भगवान की लीलाओं के ऊपर ही बने, भगवान की लीलाओं का अच्छा अध्ययन किया था हमारे जितने भी चित्रकार हैं, चलचित्र बनाने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उन्होंने नकल की, श्री कृष्ण की नकल की, बलराम जी की नकल की, इससे भगवान की लीला में सब कुछ है, सर्कस भी है, काली नाग के ऊपर देखिए नृत्य कर रहे हैं, ये सर्कस से काम तो नहीं है, भगवान की लीलाओं में भगवान मल्लयुद्ध भी करते हैं, अगर आपको रेसलिंग देखना है तो आप देख सकते हैं भगवान की लीलाओं में, जिस तरह कृष्ण बलराम मथुरा जाकर चारों ओर कुशिक से मल्लयुद्ध किया, तो रेसलिंग मैच देखने आए सारे ब्रजवासी, तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई कोई क्रीड़ा नहीं होती थी, स्पोर्ट्स का कोई वो नहीं है, वहां पर स्पोर्ट्स की कोई आशा नहीं है, खेलेंगे कैसे वहां पर जाकर, एक बहुत ही जगत को छोड़ेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे तो अब खेलने कूदने के लिए क्या रहेगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी तो आप खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट तो नहीं खेलते वहां, लेकिन वहां पर गेम सब खेला जाता है, और साथ में मल्लयुद्ध भी हम देख सकते हैं, चारों ओर मुष्टि के साथ युद्ध किया कृष्ण राम, और आपको राजनीति में रुचि है, पॉलिटिक्स में रुचि है, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो महाभारत पढ़िए, लेकिन महाभारत में जिस राजनीति का वर्णन किया गया है उसमें हम भूल ना जाए कि वहां पर कृष्ण केंद्र बिंदु है, तो महाभारत का उद्देश्य यही है कि कृष्ण को प्रसू करना, लेकिन सामान्य लोग जो उतने बुद्धि रखते हुए एकदम से नहीं समझ पाते, इसलिए तो बार बार अध्ययन करना पड़ेगा ग्रंथों का, और महाभारत का जो असली सार है गीतो उपनिषद उसे लाभ उठाना होगा, तो पॉलिटिक्स भी है, सर्कस भी है, स्पोर्ट्स भी है, और क्या चाहिए आपको बताइए, और कुछ चाहिए, और कुछ आप कहना चाहेंगे जो भगवान की लीला में नहीं बताइए, बहुत है अगर आप देखना चाहते हैं तो भगवान की लाल लीला है, क्या कमी है बताइए भगवान के नाम पर, तो जगत में जो नृत्य करते हैं जितने नर्तक हैं वो नृत्य कला का प्रदर्शन तो भगवान स्वयं करते हैं, नटवर जिसे कहा गया, जिसको गाने की इच्छा है वहां पर जाकर नृत्य गायन कर सकते हैं, वो गाने की इच्छा पूरी हो सकती है, तो हर प्रकार के कला का प्रदर्शन है वहां पर, हर प्रकार का हर्षोल्लास, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की सेवाएं वहां पर है, तो किसी चीज की वहां पर कमी नहीं है, तो हम सबको वहां पर जाना है, तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि आप आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक जीवन सफल बनाओ, और फिर क्या करोगे, आपको मौका क्या मिलेगा, कृष्ण के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, आप कृष्ण को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, उनके साथ खेल पाएंगे, उनके साथ नाच पाएंगे, ये संभव है अगर हमारी प्रबल इच्छा हो, ये हमारा परम सौभाग्य है कि पापी कंस मारा जा चुका है, तो ये कब की घटना है, कंस के मारे जाने के बाद की घटना है, हमारे प्रिय संबंध मुक्त हो चुके हैं,
हमारा ये भी सौभाग्य है कि हमारे संबंधियों ने अपने शत्रुओं को मार डाला है और पराजित कर दिया है तथा एक विशाल दुख में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर ली है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बलराम जी के साक्षात दर्शन से गौरवित हुई गोपियों ने हंसते हुए उनसे पूछा, नगर की स्त्रियों के प्राण प्रिय कृष्ण सुखपूर्वक तो है। नगर की स्त्रियों 16108 रानियां है ना, अब हम गोपियों को कौन पूछेगा, अब तो वो पटवारियों के साथ रहते हैं। आचार्य के अनुसार भगवान कृष्ण प्रिय संगनियां उन्मत्त होकर हंस रही थी क्योंकि वह अपने प्रेमी कृष्ण के वियोग में अति दुख का अनुभव कर रही थी। तो ये जो हंसी थी वो कैसी हंसी थी, पागल बनने का दिव्य उन्माद। भगवान राम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का अति आदर किया। इस तरह राम संरचना रहा शब्द हुआ कि बलराम ने गोपियों का आदर किया और पहले दिया गया भी गोपियों ने बलराम का आदर किया। क्यों, क्या क्या वे अपने परिवार वालों को आगे पूछे होते हैं, विशेष से अपने माता पिता को याद करते हैं, क्या आपके विचार में वे अपनी माता को एक बार भी देखने वापस आएंगे। तो प्रेम जिसको कहा जाता है, कई बार हम बोलते हैं कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है ना, हम रोज रटते हैं सुबह सुबह प्रातः काल, जिससे जिसके द्वारा जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि है कृष्ण प्रेम, क्योंकि है कृष्ण प्रेम, क्योंकि है कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम है क्या, यहां पर दिखाई पड़ रहा है कृष्ण प्रेम है क्या, और क्या परेशानी गुलाम वाले कृष्ण हमारे द्वारा सदा की गई सेवा का स्मरण करते हैं। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर की टीका है कि गोपियां फूलों की माला गूंद कर निपुणता से सुगंध लेप करके तथा फूलों की पंखड़ियों से पंखे शैया तथा वितान बनाकर कृष्ण की सेवा करती थी। ये भगवान के लिए उतारा गया है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो ये प्रसाद यहां बात करेंगे बता रहे हैं। तो गोपियां इतना सेवा करती थी, फूलों की माला बनाया, तो आप अभी ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जब स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तभी ये सब कर पाए, अभी आप फूलों की माला बना सकते हैं। कितने सारे फूल हैं और कितने सारे यहां पर प्रभु जी लोग हैं, माताएं भी हैं, सब हैं, सब फूल की माला बनाए और राधिकारमण कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य तो हम अभी से ही कर सकते हैं, इन प्रेम को सरल कार्यों से गोपियां भगवान की सबसे बड़ी सेवा करती हैं। ये दासार हमने कृष्ण की खातिर अपने माताओं पिताओं भाइयों पतियों पुत्रों तथा बहनों का भी परित्याग कर दिया। अब रात्रि को हम लोग बंसी बट जाती थी, सबको छोड़कर हमने लोग लाज की चिंता नहीं की, वैदिक अनुष्ठानों की चिंता नहीं की, हमने सब कुछ त्याग कर हम लोग कृष्ण के पास जाते थे। यद्यपि इन पारिवारिक संबंधों को छोड़ पाना बहुत कठिन है, किंतु हे प्रभु आप उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबों को त्याग कर हमारे साथ के समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया और चले गए। हमने सब कुछ छोड़ा उनके लिए और आप हमें वो छोड़कर चले गए, इतनी बड़ी बड़ी बात है, गलत बात है। इतने पर भी कोई स्त्री उनके वादों पर कैसे विश्वास कर सकती है, कौन कैसे विश्वास करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य जवाब है कर्म शरण ब्रज, आपने कहा था भगवद गीता में कि सब धर्मों को त्याग कर आप ब्रज में आपने शरण ले, और ये भी कहा कि माँ में कम शरण ब्रज, और हम ब्रज में आप ब्रज में हम रहते हैं और लोग तो आप ब्रज बुला रहे हैं, हम तो ब्रज में जा रहे हैं। तो इतने सारे भक्त जो साधन भक्ति में लगे हैं, वैरी साधन भक्ति कर रहे हैं, ये सोचकर कि एक दिन इन सब भक्तों को ब्रज में वास मिलेगा और वहां जाते ही पता चलेगा कि कृष्ण चले छोड़कर, तो इतनी सारी भक्ति करने का फायदा क्या, ऐसी तपस्या करने का लाभ क्या, मंगल आरती में हम क्यों आए, क्यों हम बैठ कर जप करें, प्रचार क्यों करें हम लोग। इसलिए
जब हम भाव में प्रवेश करेंगे तो कृष्ण हमें छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो भक्त कह सकते हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। भगवान को वो तो भगवान को दोषारोपण नहीं करेंगे, भगवान ने दोष देखेंगे तो कृष्ण बड़े खुश होते हैं ऐसे प्रेमी भक्तों से। हम करेंगे तो हमें प्राण लगेगा, अभी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने साधन भक्ति का आदत की थी, अब उन्हीं कृष्ण ने सहसा हम सबको त्याग कर हमारे समस्त स्नेह बंधनों को तोड़ दिया। नगर की बुद्धिमान स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के वचनों पर कैसे विश्वास कर सकती हैं जिसका हृदय इतना अस्थिर है और जो इतना कृतज्ञ है। वो उन पर इसलिए विश्वास कर बैठी थी क्योंकि वह इतने अद्भुत ढंग से बोलते हैं और उनकी सुंदर हंसी से युक्त चितवने काम वासना उत्पन्न करती है। मतलब कैसे विश्वास किया जाए ऐसे व्यक्ति पर जिसका मन अस्थिर है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। पर हम करें क्या, लेकिन उसकी हंसी ऐसी है, उसकी मुस्कुराहट ऐसी है, जब मुस्कुरा कर हमारी ओर देखता है और वो त्रिगुण रूप में खड़े होकर, तो हम सब गाय घायल हो जाते हैं। फिर हम भूल जाते हैं कि उसने कब क्या कहा, आज क्या कहा, कल क्या कहा, हमेशा अपनी बातों को ही बदल देता है। तो कैसे विश्वास किया जाए ऐसे व्यक्ति को, कौन से आप कभी जा रहा है नाम है भक्ता प्रदर्शी, हे कुंती पुत्र घोषणा करो कि मेरे पुत्र का कोई विनाश नहीं होगा। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कहने के लिए, क्यों कहा, क्योंकि कृष्ण ने सोचा अगर मैं घोषणा करूंगा तो मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, कभी मैंने अपने ही वचन को भंग कर दिया तो फिर लोग दोषारोपण करेंगे, इसलिए अर्जुन तुम भरोसा करोगे तो मैं तो तुम्हारे प्रेम में बना हूं, फिर मैं मर्यादा को उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए तुम घोषणा करो। कौन दिया प्रति जाना नहीं, आप घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार यहां पर लिखा गया है श्रीधर स्वामी के अनुसार श्लोक की प्रथम दो पंक्तियां कुछ गोपियों की उक्ति है और अन्य दो पंक्तियां पंक्तियों में कुछ के उत्तर है। कुछ ही पहले जो उक्ति है उसमें उक्ति प्रसुक्ति है, गोपियां स्वयं ही बता रही कि क्या परिस्थिति है, कितने कृतज्ञ है और कितना उनका मन स्थिर है, साथ में उस संशय का स्वयं गोपियां उत्तर भी दे रही है। यह है प्रेम का लक्षण। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप मां अपने बच्चे को बहुत डांटे और मारती भी है कि वो जाता है पड़ोस में जाकर शैतानी करता है, किसी का सामान तोड़ देता है, किसी घर से सामान चोरी कर लेता है, तो मां बड़ी डांटती है मारती भी है। पड़ोस वाले जो आपके शिकायत करते हैं कि आपका लड़का बहुत खराब हो गया, बिगड़ चुका है, ऐसे ऐसे करता है, तो फिर क्या होगा, उस समय क्या होगा, उनका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, पर नहीं वाला लड़का ऐसा नहीं है, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए तो हो गया ना विरोधाभास, अपनी ही बातों में विरोधाभास हो गया, पहले तो उस बच्चे को डांट रहे हैं मार रहे हैं, बाद में जब अन्य लोग आरोप लगा रहे हैं तो फिर बच्चे का समर्थन कर रहे हैं, बच्चे से प्रेम कर। तो कहने का अर्थ है ये सब प्रेम का लक्षण है और ये भगवान की लीला में नजर आता है। गोपियों उनके विषय में बातें करने से क्या लाभ, कृपा करके किसी अन्य विषय पर बात चलाओ, यदि वे हमारे बिना अपना समय बिता लेते हैं तो हम भी उसी तरह से अपना समय बिता लेंगे। श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि यहां पर गोपियां सूक्ष्म रीति से संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण उन सबों के बिना अपना समय सुखपूर्वक बिता लेते हैं, जबकि वह सब अपने स्वामी के बिना सर्वाधिक दुखी हैं। भगवान तथा उनमें यही अंतर है। श्रील विश्वनाथ चतुर्थी ने इसकी टीका इस प्रकार की है, गोपियों ने अपने को अन्य स्त्रियों से पृथक मानते हुए इस प्रकार सोचा, यदि अन्य स्त्रियां अपने प्रेमियों के साथ रहती हैं तो वह जीवित रहती है और यदि उनसे विलग हो जाती है तो मर जाती है। अन्य स्त्री क्या है, जीवित रहती है जब वो साथ में रहती है और जब अलग हो जाती है तो फिर क्या होता है, मर जाती है। लेकिन हमारी क्या अवस्था है, हम तो ना जीवित है ना हम लोग मर रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्दशा है। ऐसी परिस्थिति में आपको डाल दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको काल कोठी में डाल दिया जाए, और ना वहां पर मर रहे हैं ना जी रहे। विधाता ने हमारे मस्तकों पर यही भाग्य लिखा है, हम इसकी कौन सी औषधि ढूंढ सकते हैं। ये शब्द कहते हुए तरुण गोपियों को भगवान शौर्य की हंसी, अपने साथ उनकी बहुत बातें, शौर्य मतलब कृष्ण, अपने साथ उनकी बहुत बातें, उनकी आकर्षक चितवने, उनके चलने का ढंग तथा उनके प्रेम पूर्वक आलिंगनों का स्मरण हुआ है। जब ऐसा कह रहे थे कि हम लोग भी अब ऐसे ही समय बिता लेंगे, अगर वो बिता सकते हैं हमारे बगैर वहां पर पटरानियों के साथ अलग अलग समय बिता सकते, तो हम भी बिता लेंगे समय। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन हम क्या करें क्या, कि जब हम उनकी मोहक बातों का स्मरण करते हैं, उनके आकर्षण चितवनों का स्मरण करते हैं, उनके चलने का ढंग उसका स्मरण करते हैं, और ये प्रेम आलिंगनों का स्मरण करते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग विलाप करते हैं। तो अभी ऐसे ही हुआ कि वो स्वर जैसे करने लगे श्री कृष्ण का, फिर से ऐसा बोलते हुए तो विलाप करने लगे। विलाप का होता है रोते भी हैं और बोलते भी हैं, तो कहते हैं विलाप, मतलब आप बोल भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर की टीका इस प्रकार है, गोपियों ने सोचा कृष्ण रूपी चंद्रमा अपनी अमृतमय हंसी के तीरों से हमारे हृदय को विलीन करता हुआ दूर चला गया। जब वह नगर की स्त्रियों के साथ भी वैसा ही करता है तो वह क्यों नहीं मर जाएंगे, नगर की स्त्रियों के साथ भी ऐसे ही करता हो तो क्यों नहीं मरेंगे, वो भी मरेंगे। इन विचारों से अद्भुत होकर तरुण गोपियों गोपी आशी बल्दे की स्थिति में भी चिल्लाने लगे, करना कर रहे थे। सबों को आकृष्ट करने वाले भगवान बलराम ने नाना प्रकार के बीच बचाव में पटु होने के कारण गोपियों को भगवान कृष्ण द्वारा उनके साथ भेजे हुए कुछ संदेश सुनाकर उन्हें धीरे बनाया। इन संदेशों ने गोपियों के हृदयों को गंभीरता से स्पर्श किया। भगवान बलराम ने गोपियों को भगवान कृष्ण के सर्वाधिक मोहक संदेश देकर सांत्वना दी थी, जिनमें मधुर अनुनय विनय था और जो उनके प्रति शुद्ध प्रेम से प्रेरित थे और जिनमें लंच मात्र भी डर नहीं था। श्री जी गोस्वामी ये भी टीका करते हैं कि संकर्षण नाम से भी यहाँ पर श्लोक में संकर्षण शब्द आया है, इससे ये अभिप्रेत है कि बलराम ने कृष्ण को अपने मन में प्रकट होने के लिए आकर्षित किया। संकर्षण का मतलब आकर्षण करना, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण को अपने मन में आकर्षित किया। इस तरह गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन कराया, बलराम ने श्री कृष्ण का दर्शन कराया अपने मन में आकर्षित कर। बलराम इस प्रकार से श्री कृष्ण की प्रेम का प्रसाद बना दिया। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विविध संदेश भेजे थे, कुछ में गोपियों के लिए दिव्य ज्ञान का उपदेश था, जिसको क्या कहते हैं उद्धव संदेश, कुछ में अनुनय विनय और अन्य भगवान की शक्ति को प्रकट करने वाले थे। हृदयमय शब्द के दिए हुए हर के अतिरिक्त ये शब्द भी सूचित करता है कि ये संदेश गोपनीय थे। भगवान बलराम वहां मधु तथा भागवत दो मास तक रहे और रात में अपनी गोपिका मित्रों को माधुर्य सुख प्रदान करते रहे। तो श्रील स्वामी कहते हैं जिन गोपियों ने श्री बलराम के साथ उनके गोकुल आने पर माधुर्य सुख प्राप्त किया, उन्होंने उस समय अल्प आयु होने के कारण कृष्ण के दास नृत्य में भाग नहीं लिया था। इसकी पुष्टि में श्री जी गोस्वामी ने भागवत का श्लोक उद्धृत किया है, ये बताता है, ये श्लोक ये बताता है कि कुछ विशेष गोपियां बलराम की संगनिया के रूप में रहती हैं। ये नहीं, जी गोस्वामी कहते हैं कि जब कृष्ण ने शंखचूड़ का वध किया, उस समय मनाए गए होलिका उत्सव में बलराम ने जिन गोपियों के साथ रमण किया, कृष्ण द्वारा रमण की गई गोपियों से भिन्न थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस व्याख्या से सहमत है। अनेक स्त्रियों के संग भगवान बलराम ने यमुना नदी के तट पर एक उद्यान में रमण किया। यह उद्यान चंद्रमा की किरणों से नहलाया हुआ था
और रात में खिली कुमुदिनियों की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु के द्वारा आलिंगित थी। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर बताते हैं कि बलराम जी की माधुरी लीला यमुना के किनारे छोटे से जंगल में हुई, जो श्री राम घाट के नाम से विख्यात है और श्री कृष्ण की राजधानी से काफी दूर है। तो बलराम जी की ही रामलीलाएं होती है, लेकिन अलग घाट में, तो राम घाट था। वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी वारुणी मथुरा एक वृक्ष के खोखले चित्र से बह निकली और अपनी मधुर गंध से सारे जंगल को और अधिक सुगंधित बना लिया। श्री सीधा स्वामी कहते हैं कि वारुणी शहद के आस्वादन आसवन से प्राप्त एक द्रव है। श्री विश्वनाथ के ठाकुर कहते हैं वरुण पुत्री देवी वारुणी उस विशेष देवी प्रिय का की अधिष्ठात्री है। वरुण की पुत्री वारुणी वह श्री हरिवंश से निम्नलिखित उदाहरण भी देते हैं। यहां देवी वारुणी बलराम से कहती है, हे निष्पाप, मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके पास भेजा है। तो वारुणी जब वो निकल रही थी तो क्या कह रही है, वो बलराम को क्या कह रही है कि मेरे पिता ने आपके पास मुझे भेजा है। क्यों भेजा है, अभी सुनो। वायु उस मधुर पेय की धारा की सुगंध को बलराम के पास ले गए और जब उन्होंने उसे सुंगा तो वह वृक्ष के पास गए। जब सुंगा बलराम ने तो वृक्ष के पास गए और वहां उन्होंने तथा उनकी संगनियों ने उनका उसका पान किया। तो वारुणी जो है शहद, इसको कहते हैं वारुणी, वो पान करते क्या हुआ, जब गंधर्व कर उनका यशोगान कर रहे थे तो बलराम जी तरुण स्त्रियों से तेजोमय वृक्ष के मध्य रमण कर रहे, इंद्र के हाथी शानदार ऐरावत की तरह लग रहे थे जो हथियों के झुंड में रमण कर रहा हो। उस समय आकाश में धुंधुकियां बजने लगी, गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की और उन्होंने बलराम जी के वीरता पूर्वक कार्यों की प्रशंसा की। जब उन कार्यों का गान हो रहा था तो हला युद्ध मधोमय जैसे होकर अपने संगियों के संग विविध जंगलों में घूम रहे थे, उनकी आंखें नशे में जोर थी। तो बलराम जी इस वारुणी का पान करते हैं और नशे में मनोमत हो जाते हैं, लेकिन ये साधारण जगत की मदिरा नहीं है। कोई सोचे कि बलराम जी भी मदिरा का पान किए तो हम भी करेंगे। हर्ष से उन्मत्त बलराम जी फूल मालाओं से खेल रहे, इनमें सुप्रसिद्ध वैजयंती माला सम्मिलित थी। वे कान में एक कुंडल पहने थे और नित्यानंद पुरोहित के कान में भी एक ही कुंडल है और उनके मुस्कान भरे कमल मुख पर पसीने की बूंदें सारा सुशोभित थी मानो बर्फ के कण हो। तब उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके। अब यमुना जी को उन्होंने बुलाया, चलो आप एक तो नशे में थे और फिर यमुना जी को बुला रहे, चलो आ जाओ। तब उन्होंने यमुना को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके, किंतु उसने उनके आदेश की उपेक्षा इसलिए कर दी क्योंकि वे मनोमत थे। अब यमुना जी ने देखा कि मनोमत है तो ये ठीक नहीं मेरा मन पा था, इससे बलराम खुद हो उठे। बलराम जी को जो क्रोध आता है तो फिर बहुत निकल जाते हैं। तो वृंदावन की लीलाओं में ये इतना नहीं दिखाई पड़ रहा है, वृंदावन से जब बाहर जाएंगे मथुरा और फिर आगे द्वारका में, वहां पे हम देखेंगे किस तरह बलराम जी क्रोध देते हैं। ये तो एक छोटा सा है। बलराम ने कहा, मेरा आराधन करने वाली पापनी, तो मेरे बुलाने पर ना केवल मनवारे चलने वाली हो, मैं अपने हल की नोक से 100 धाराओं में तुम्हें यहां से ले आऊंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन बलराम, इस प्रकार डांटी जाकर डरी हुई यमुना देवी आई और यदुरा बलराम के चरणों पर गिर पड़े। जब उन्होंने ऐसा कहा तो यमुना जी भयभीत हो गए, कांपते हो रहे हैं उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। तो जी गोस्वामी कहते हैं, बलराम के समक्ष प्रकट होने वाली देवी श्रीमती कालिंदी की अंश रूपा थी, जो कि द्वारका में भगवान कृष्ण की पत्नी है। श्री जी गोस्वामी ने कालिंदी की छाया बतलाते हैं और श्री विश्वनाथ श्री ठाकुर पुष्टि करते हैं कि वे कालिंदी की अंश है, कालिंदी नहीं। श्री जी गोस्वामी श्री हरिवंश से भी इस कथन के द्वारा प्रमाण देते हैं, अर्थात देवी यमुना समुद्र की पत्नी है, इसलिए हरिवंश में उन्हें सारंगना भी कहा गया। कई बार ऐसा लगता है कि हर आचार्य जो है अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ा सा अंतर नजर आता है, लेकिन वास्तव में कोई अंतर नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपको रसगुल्ला दिया जाए, आप इधर से खाओ या उधर से खाओ, आगे से खाओ, पीछे से खाओ, नीचे से खाओ, मीठा लगेगा। तो लेकिन उद्देश्य क्या है? रसगुल्ला खाना। उसी तरह से कृष्ण लीला है। तो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पीछे से खा रहे हैं, आगे से खा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यमुना जी ने कहा, हे विशाल भुजा वाले राम, हे राम, मैं आपके पराक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपने एक अंश मात्र से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे प्रभु, आप मुझे छोड़ दें। हे ब्रह्मांड के आत्मा, मैं भगवान के रूप में आपके पद को नहीं जानती थी, किंतु अब मैं आपकी शरण में हूं और आप अपने भक्तों पर सदैव दयालु रहते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तब बलराम ने यमुना को छोड़ दिया और जिस तरह हाथियों का राजा अपनी हथनियों के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह मैं अपने संगियों के साथ नदी के जल में प्रवेश हुआ। बलराम ने जी भर कर जल क्रीड़ा किया। जब वे बाहर निकले तो देवी कांति ने उन्हें नीले वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा चमकीले गले का हार भेंट किया। बलराम ने नीले वस्त्र पहने और गले में सुनहरा हार डाल लिया। सुगंधियों से लेपित और सुंदर ढंग से अलंकृत होकर वह इंद्र के हाथी जैसे सुशोभित हो रहे थे। चंदन लेप तथा अन्य शुद्ध सुगंधित वस्तुओं का लेप करके बलराम इंद्र के महान हाथी एरावत जैसे लग रहे थे। हे राजा, आज भी देखा जा सकता है कि किस तरह यमुना अनेक धाराओं में होकर रहती है। यमुना भी इसलिए कभी सीधा नहीं रहती, गेट में नहीं रहती। तो असीम बलशाली बलराम द्वारा खींचे जाने पर बन गए। इस प्रकार यमुना उनके पराक्रम को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार बलराम ने सारी रातें ब्रज में रमण करते करते एक रात इतरा दी थी। उनका मन ब्रज की तरुण स्त्रियों की अद्वितीय माधुरी से मोहित था। बलराम जी ब्रज की तरुण एवं सुंदर स्त्रियों की मोहक लीलाओं से मुक्त हो गए। इस तरह हर रात उनके लिए नया अनुभव था और सारी रातें इस तरह बीत गए मानो एक ही रात। तो इस लीला को यमुना आकर्षण लीला भी कहते हैं और बलराम जी ने इस लीला के द्वारा अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और यमुना जी के ऊपर कृपा बरसाई और साथ में वृद्धाश्रम को संदेश भी पहुंचाया श्री कृष्ण का, उनको सांत्वना दी। और इस प्रकार से बलराम जी के आने पर कुछ तो आशा हुई होगी कि कृष्ण आए, क्योंकि बलराम ने उनको सांत्वना दी थी कि जल्दी आएंगे कृष्ण, आप लोग चिंता न करें। और एक बार एक लीला है द्वारका की लीला की प्रकाश की है और उस लीला में भी इसी प्रकार का कुछ प्रसंग है कि बलदेव जी को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं कि आप कृपा करके जाए और बताएं परिवासियों को उनकी श्री कृष्ण जल्दी आ रहे हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि पहले मैं गया था 2 महीने के लिए वहां पर और मैंने सांत्वना दी थी कि आएंगे, अभी देवी गए नहीं, अभी जाओ तो सुरक्षित मार पड़ेगा, मैंने कहा। उधर जो नारद जी के बीच में संवाद चल रहा है और श्री कृष्ण जो है वो क्या हुए हैं, बेहोश हुए, मूर्छित हो गए विरह के कारण, ब्रजवासियों के विरह के कारण श्री कृष्ण विरह के कारण मूर्छित हो गए। द्वारका की घटना है, द्वारका की। तो उद्धव जी जो चर्चा हो रही है, उद्धव जी ये कह रहे हैं कि वो संदेश लेकर गए थे पहले भी, वो भी संदेश लेकर आए थे, तो उन्होंने देखा गोपियों का प्रेम, देखा उनका विरह, देखा ब्रजवासियों का प्रेम, देखा उनका विरह, देखा। तो अब वो इस लायक नहीं समझते अपने को कि संदेश दे जाकर, मुझे तो गर्व था बड़ा कि मुझे बड़ा ज्ञान है, लेकिन वहां जाकर जब उनसे जब प्रेम देखा तो मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे तो उनकी धूली काटनी हो जाए वो बहुत है। तो पहले मुझे संदेश देने गया था तो अभी तक तो ये नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बाद में सुभद्रा जी कहते हैं कि ठीक है तो मैं जाता और फिर वो जाकर माता यशोदा को बताते हैं वृंदावन में और किस प्रकार जल्दी आने वाले हैं कृष्ण और बलराम, पीछे आने वाले हैं तो निकल चुके हैं वहां से, तो हर प्रकार की व्यवस्था कर ले। तो फिर से नारद जी पीड़ा बुलाते हैं और जब पीड़ा बुलाते हैं तो कृष्ण उठते हैं और कृष्ण उठते ही क्या होता है, जैसे ही वो उठते हैं कि वो मेरे विकार इतने मदोन्मुख होते हैं वो कि ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और क्योंकि वो बदलाव के बारे में इतना स्मरण कर रहे होते हैं और इतने मदोन्मुख होते हैं
कि वो बिल्कुल टेढ़े टेढ़े चलते हैं, बिल्कुल टेढ़े टेढ़े चलते हैं, हिलते डुलते चलते हैं, और फिर बड़े मुश्किल से रथ पर बैठते हैं। नारद जी ने इससे पहले नारदों को कहा था कि अभी मैं दोबारा उठाने का प्रयास करूंगा, आप जल्दी रथ तैयार रखना, क्योंकि आप रथ तैयार नहीं रखोगे तो फिर कहीं और भाग जाएंगे, कुछ और ना हो जाए, तो रथ देखेंगे तो उनको सांत्वना मिलेगी कि आप तैयार खड़े हैं वृंदावन जाने के लिए। तो इस प्रकार जब नारद जी दोबारा वीणा बजाई और कुछ हिलते डुलते रथ में जाके बैठे, तो इस प्रकार कृष्ण भी चल पड़े। तो पहले कौन गए? बलराम जी। फिर उसके बाद कौन गए? सुभद्रा जी। उसके बाद कौन गए? जगन्नाथ जी। इसलिए आगे क्या हो गई जगन्नाथ पे, जगन्नाथ जी को जब रथ पे उठा जाता है तो वो इतनी आसानी से नहीं बैठते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद पांडव लोग खिलाते होंगे इसलिए वो झुकते हैं, कितनी गालियां देते हैं वो लोग पांडव लोग जगन्नाथ जी, और बड़े मुश्किल से उनको रथ पर उठाया जाता है। प्रातः काल अगर वो 8 या 9 बजे कमरे से निकलते हैं और कहीं जाकर 2 बजे जाकर 1 बजे जाकर कई बार और भी लेट जाता है, तब जाके वो रथ पर उठाया जाता है, और उसके बाद कभी उस रथ को चलाना हुआ ही गलत समस्या है। तो प्रातः काल 8 या 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, तो कई बार रथ यात्रा प्रारंभ होती है 3 बजे, इस बार भी रथ यात्रा बहुत देर से शुरू हुई, 4 बजे हुई थी तो बहुत देर से हुई। जगन्नाथ जी को उठाना बहुत मुश्किल है, बलराम जी उसको बता रहे थे जल्दी बैठ जाते, लेकिन जगन्नाथ जी इतनी आसानी से नहीं बैठते। तो इस कारण से ये लीला आज भी आप देख सकते हैं जगन्नाथ पुरी में रथ यात्रा के समय। तो ये कुछ लीलाएं थी, वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया था हमने। अब हम लोग कुछ बातें बताना चाहेंगे जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बलराम जी से संबंधित है, तो श्रील गोस्वामी ने भक्ति साथ सुन रहे हैं, ऐसे कई प्रसंग हैं, तो कृपा करके आप ध्यान। तो ये अध्याय है भक्ति साथ सुन है, इस अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण के गुरु, और ये 26वां गुरु बता रहे हैं गंभीर। तो आप देखिए क्या गंभीरता है, जो व्यक्ति किसी से अपने मन की बातें नहीं कहता अथवा जिसके मन की गति तथा कार्य योजना को समझना कठिन हो वह गंभीर कहलाता है। जब ब्रह्मा के द्वारा कृष्ण के प्रति अपराध हो चुका था तो ब्रह्मा ने उनसे क्षमा याचना की, उन्होंने उत्तम स्तुति की, किंतु अंत तक वह ये नहीं समझ पाए कि कृष्ण प्रसन्न हुए या अप्रसन्न हुए, वो ऐसे खड़े हुए। आप देखा हुआ चित्र में बड़ा अच्छा पेंटिंग बना है, और ब्रह्मा जी कामना करे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये खुश है या दुखी है, अरे क्या हो रहा है, छुट्टी करता जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने फिर आपको सोचा कि तो समय तो बर्बाद ही हो रहा है, मेरा नहीं इनका, मैं इनकी लीला में विघ्न डाल रहा हूँ, अच्छा है कि मैं वापस जाता हूँ। तो उनको ये लगा कि कुछ संकेत दे रहे हैं कि अब मुझे और भी लीलाएं करनी है, बहुत हो गई प्रार्थना। तो ब्रह्मा जी वापस चले, क्योंकि वास्तव में कृष्ण ब्रह्मा जी से बड़े क्रोधित थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से इसलिए क्रोधित है कि उन्होंने क्या किया, बछड़ों को और द्वारों को कृष्ण से अलग कर दिया, लेकिन इंद्र से क्रोधित नहीं थे, इंद्र से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि गिरिराज जी को धारण करके वो देखिए गिरिराज जी को धारण किया कृष्ण, गिरिराज जी को धारण करके सभी ब्रजवासियों को मौका मिला 7 दिन 7 रात कृष्ण के सौंदर्य का आस्वादन करने के लिए, ये मौका तो पहले कर दिया। तो ये किसके कारण हुआ था, इंद्र अगर बरसात नहीं करते तो कृष्ण की राज को धारण ही क्यों करते, इंद्र की जय हो, गिरिराज गोवर्धन की जय हो। तो इस प्रकार आगे क्या बता रहे हैं, कृष्ण की गंभीरता का दूसरा उदाहरण राधा रानी के प्रति उनके प्रेम व्यापार का है, वे राधा रानी के प्रति अपने प्रेम के विषय में सदैव अत्यंत मौन रहते थे, यहां तक कि उनके बड़े भाई एवं शिव संगी बलदेव तक उनके मनोभावों को उनकी गंभीरता के कारण नहीं समझ पाए। तो कृष्ण कभी भी राधा रानी के साथ जो भी लीला प्रसंग होता था बलराम जी के सामने नहीं बोलते, मौन रहते थे। तो बलदेव जी भी समझ नहीं पाते थे इतने गंभीर क्यों है मेरे सामने, तो ये उनकी गंभीरता थी। कृष्ण की गंभीरता ये थी ये वो मौज है अपने बातों में, इसको बड़ा अद्भुत रखते थे। इसे जब राधा कृष्ण होते हैं साथ में, तो बलराम जी जब साथ में होते हैं कृष्ण के, बलराम जी जब कृष्ण के साथ होते हैं तो राधा जी कभी सामने नहीं आया, क्योंकि बलराम जी ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, ज्येष्ठ होने के नाते राधा जी कभी उनके सामने आते नहीं है। तो ये भौतिक समाज में नहीं, आध्यात्मिक समाज में भी इस प्रकार का शिष्टाचार का पालन होता है। तो इस प्रकार ये बताए स्वरूप गोस्वामी ने यहाँ पर, और आगे एक जगह और बता रहे हैं इस गुण का वर्णन किया है, लज्जालु। जो व्यक्ति कभी विनम्रता तथा संकोच प्रदर्शित करता है वह लज्जालु कहलाता है। अब क्या लज्जा है देखिए, जैसे कि ललित माधव ने कहा है, जब कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो उनकी लज्जा प्रकट हुई। सारी गोपियां कृष्ण के अद्भुत कार्य को देख रही थी और कृष्ण भी गोपियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब कृष्ण की निगाह गोपियों पर गई तो उनका हाथ जगमगाने लगा, जिससे देखकर पर्वत के नीचे खड़े सारे गोपजन कुछ विचलित हो गए। उस समय घोर शब्द हुआ और सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। उस समय बलराम जी सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि ये सारे भूत जन गोवर्धन पर्वत के ढगमारे से भयभीत हो उठे, किंतु बलराम की मुस्कान देखकर कृष्ण ने सोचा कि बलराम ने उनके मन की बात टाल ली है कि वो गोपियों की तरफ देख रहे हैं, अतः वे तुरंत लाज से गड़ गए। यानी कृष्ण को लज्जा आ गई कि बलराम समझ गए हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, गोपियों की तरफ गिरिराज ने धारण किया है लेकिन कृष्ण तो वहां भी आनंद है। कोई अगर मान लीजिए हैवीवेट चैंपियनशिप आप देखा हो, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप होता है, ये भी होता है, तो आपने देखा होगा टीवी में देखा होगा कि किस तरह से वो वजन उठाते 300 किलो 400 किलो और उसको उठाने के लिए कितना प्रयास करता है व्यक्ति, है ना, और कितने हजारों की तादाद में लोग उसको देखते हैं, लगभग सभी लोग देखते हैं। आजकल चैनल सब जगह खुल गए हैं और विश्व के हर प्रकार के लोग देखते हैं, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। तो व्यक्ति वो वजन उठाता है, भार उठाता है, उसको उठाने के लिए कितनी बार वो सोचता है और उठाते हुए उसकी क्या हालत होती है और कैसी कैसी वो आवाजें करता है। ऐसा लगता है कि उसका स्वस्थ रहने का समय आ गया और उठाने पर भी वो आगे जाता है और पीछे आता है। लेकिन कृष्ण जब गिरिराज जी को धारण किए हैं तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको तो ऐसे उठा लिया छोटे उंगल से पाया हाथ के और उसके बाद तो बस आन ले रहे हैं अपने परिक्रमा के साथ और क्या कर रहे हैं, गोपियों की तरफ देख रहे हैं और बलराम जी को पता चल गया लज्जित भी हो रहे हैं। तो ये एक और लीला से पता चलता सर्वप्रसिद्ध। जब देवऋषि नारद भगवान का यशोगान कर रहे थे तो शिव जी के कंठ की नीली रेखा लुप्त हो गई, नीली रेखा कहीं चले गई, ये देखकर शिव पत्नी गौरी की शंका से कि वह कहीं उनके पति के वेश में कोई छत्र वेश तो नहीं है, उन्हें छोड़कर तुरंत चले गए, क्योंकि वो नीला का नजर नहीं आ रहा था शिव जी का। तो गौरी कहें क्या करें, उन्होंने छोड़ दिया, वो वहां चले गए और वो शक हो गया कि और तो नहीं आने चाहिए पति के वेश में। इस तरह कृष्ण के नाम का कीर्तन सुनकर बलराम जी ने देखा कि उनका वस्त्र सफेद हो गया है। बलराम जी का वस्त्र क्या है नीला, लेकिन जब उन्होंने नाम संकीर्तन सुना, कृष्ण का नाम सुना, तो उनका वस्त्र सफेद हो गया, यद्यपि वे सामान्यतः नीला वस्त्र धारण करते थे। इसी तरह भूत कुमारियों ने देखा कि यमुना नदी का सारा जल दूध बन गया है, अतः वे उसे बिलो पर मक्खन निकालने लगे। जैसे राधाकुंड में भी सामने का बताते हैं कि वो बिल्कुल दूध बन जाता है और कई महापतिवासी हैं बोतल में जल भरते हैं, दूध भरते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी गायब हो जाता है, फिर से पानी में जाता है, अतः वे उसे बिलोकर मक्खन निकालने लगे। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत या कृष्ण के यश का प्रसार करने से हर वस्तु श्वेत एवं शुद्ध बन गई। तो ये एक सुभावना का लक्षण है कि हमारा मन भी पवित्र हो जाता है, बिल्कुल दूर के समान सफेद हो जाता है। अभी हमारा मन कहते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमारा मन कोयले से भी ज्यादा काला है। कोयले से आप कुछ भी धोएंगे वो वस्तु जो है काली पड़ जाएगी, लेकिन कोयला कभी सफेद नहीं होगा। फिर आगे अध्याय 29 में क्या बताया, कृष्ण प्रेम के अभिव्यक्ति व्यभिचारी भाव के बारे में बताया गया है। श्री रूप गोस्वामी 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव बताते हैं। व्यभिचारी भाव का मतलब यह है कि जब इंद्रियों के द्वारा क्या होता है, नाना प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं जो कि हमेशा के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्षण के लिए आते जाते रहते हैं, उसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। निराशा, विषाद, दैन्य, ग्लानी, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, विस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जड़ता, लज्जा, अवता यानी कोपन, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, दम, असूय, दुष्टता, सुप्ति, निद्रा एवं बोध, ये 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव है। ये आते जाते हैं, जैसे हमने उदाहरण दिया था पहले कि जब कालियागम की लीला हो रही थी तो सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, तो हमेशा तो भयभीत नहीं रहते ना, तो उस घटना में उस लीला के दौरान जो ब्रजवासियों में जो भयभीत होना है वो जो भाव प्रकट करते हैं उस भाव को व्यभिचारी भाव करते हैं, वो हमेशा भी नहीं होता। जैसे हम भी कई बार व्यभिचारी भाव प्रकट करते हैं विकृत रूप में, तो ये यहां पर बताया गया इस प्रकार। और आगे इसमें ये वर्णन मिलता है कृष्ण प्रेम के अन्य भाव सुप्ति। तो ये 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव का वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी, एक ही भाव का वर्णन किया है। जितना आपको विस्तार से वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में दिव्य रसों के बारे में और इसकी व्याख्या और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा जिस तरह श्री रूप गोस्वामी वर्णन किया है। एक बार बलदेव जी निद्रा में इस प्रकार बोलने लगे, हे कमल नयन कृष्ण, आपकी बाल लीलाएं स्वेच्छा से ही प्रकट होती है, ये सोते बोल रहे बलराम जी, अतः इस कालियादास के आदम पे गर्भ को तुरंत चूर कर दीजिए। ये द्वारका में बलराम जी लेटे हुए हैं अपने शैया में और ये बोल रहे हैं। ये कहकर बलदेव जी ने सारी यदु सभा को चकित कर दिया और कुछ काल तक उन्हें हंसाते रहे। फिर गैरी जब भाई लेते हुए और अपने पेट में तरंगे उठाते हुए हल्दम बलदेव पुनः अपनी गाढ़ निद्रा में सो गए। ये प्रेम की सुक्ति का उदाहरण है, मतलब सोते हुए भी बलराम जी प्रेम प्रकट कर रहे हैं कृष्ण के लिए। और अध्याय 37 कृष्ण की सेवा के उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलेट, जैसे मान लीजिए कि आप कमरे में घुसे, आपने मोर पंख देखा और मोर पंख देखते ही आपको कृष्ण का स्मरण होता है, सोती पर किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी स्थान को देखकर अगर हमें कृष्ण का स्मरण होता है तो वो उद्दीपन, उद्दीपन मतलब स्टिमुलेट करता हमारे जो स्नेह को हमारे आकर्षण को बढ़ाता है। और हमें उद्दीपन कब होता है कौन बताया, कितने बजे होता है उद्दीपन बताइए?
9 बजे।
हम सबको उद्दीपन होता है, बाहर प्रसाद गोविंदे नाम धाम वैष्णव, लेकिन प्रसाद देते हुए नहीं जब घड़ी में 9 बजते हैं तब हमें उस समय उद्दीपन होता है और हमारा आकर्षण प्रसाद के लिए बढ़ जाता है। तो ये तो एक हमारी अवस्था की बात है, लेकिन वास्तव उद्दीपन बहुत ऊंची अवस्था है। ये तो उस समय होता है जब कोई भाव की अवस्था पहुंचता है उस प्रकार का उद्दीपन होता है। और क्या होता है विदग पादन एक कथन है, जब कृष्ण बंसी बजा रहे थे तो बजरे ने उत्सुकता पूर्वक घोषणा कर दी, जरा देखो तो किस तरह स्वर्ग का राजा इंद्र कृष्ण की बांसुरी की दिव्य ध्वनि सुनकर अपने स्वर्ग लोक में क्रंदन कर रहा है और भूमि पर उसके आंसुओं के गिरने से वृंदावन देवताओं के लिए स्वर्गिक आवास जैसा बन दिख रहा है। मतलब कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और इंद्र रो रहे हैं और वो आंसुए अश्रुधार यहां पर ब्रज में गिर रही है और कारण से क्या हो गया है, ये स्वागिक वातावरण हो गया है यहां पर। बांसुरी जो सुना है बांसुरी सुनते ही जो है बलराम जी इस प्रकार से उनके अंदर उड़ी पर जागृत हुआ।
और सत्य भक्ति की बात करता है। गोकुल में कृष्ण के वैष्णों को चार समूह में बांटा जाता है, और पहले जो है वो था शुभ चिंतक, जिनको सुबुद्ध कहा, दूसरे हैं सखा, और तीसरे बताए गए हैं विश्वास पात्र सखा, और चौथे बताए गए हैं प्रिय धर्म सखा, जिनको गणेश सखा बताया गया। श्री कृष्ण के शुभ चिंतक में तो उनसे तले बड़े होते हैं, और उनमें कृष्ण के प्रति वात्सल्य पाया जाता है। कृष्ण से बड़े होने के कारण सदैव हर प्रति से कृष्ण की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, वे कभी कभी हथियार धारण करते हैं जिससे वे कृष्ण को हानि पहुंचाने वाले आतताई को दंडित कर सकें। उनके शिव चंद्रमा में सुभद्र, ये सुभद्र सुभद्रा नहीं है, सुभद्र मंडली भद्र, भद्र भद्र गोवर्ध यक्ष इंद्र भट्ट भद्राम वीर भद्र महाभद्र विजय तथा बलभद्र है, यानी कि शुभ चिंतक सदैव कृष्ण से बड़े होने के कारण उनके कल्याण की कामना करते हैं। तो बलराम जी में ये मित्रता की भावना भी है। तीन प्रकार के रसों का आदान प्रदान करते हैं बलराम जी, एक तो सख्य रस, एक वात्सल्य रस और एक दास रस, ये तीनों रसों का मिश्रण रहता है। बलराम जी का जो कृष्ण से संबंध है इस प्रकार से इन तीनों रसों का आदान प्रदान रहता है। और हे वयोवृद्ध मित्र ने कहा, एक मैं वयोवृद्ध मित्र ने कहा, हे मनवी भद्र, तुम चमचमाती तलवार क्यों घुमा रहे हो? क्या तुम हरिश्वासुर को मारने जा रहे हो? हे बंदे, तुम व्यर्थ इस भारी हल को क्यों धारण किए हो? हे विजय, तुम व्यर्थ उत्तेजित ना हो। हे भद्रवर्धन, इस प्रकार गर्जने तरंगने की आवश्यकता नहीं है। यदि ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये केवल गोवर्धन पर्वत के ऊपर गर्जने वाला एक बादल है, यह हरिश्वासुर नहीं है जिसे तुम लोगों ने सार जैसा समझ रखा है। कृष्ण ने बड़े शुभ चिंतक मित्रों ने विशाल भारत को एक बड़े सार के रूप में प्रकट होने वाला हरिश्वासुर समझा था, और इसी उत्तेजना के बीच एक निश्चित रूप से बताया कि वास्तव में एक गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक बादल था, हरिश्वासुर नहीं है। अतः उसने अन्य सभी मित्रों को सूचित किया कि कृष्ण के विषय में चिंतित ना हो, क्योंकि इस समय हरिश्वासुर से कोई भय नहीं है। इन शुभ चिंतक मित्रों में मंडली भद्र तथा बलभद्र प्रधान है। मंडली भद्र का वर्ण इस प्रकार है, उसका रंग पीला और केवल अत्यंत आकर्षक है, वह हमेशा एक रंग बिरंगी लाठी लिए रहता है, सदैव सिर पर मोरपंख धारण करता है और अत्यंत सुंदर लगता है। मंडली भद्र के स्वभाव का पता इस कथन से चलता है, मित्रों हमारे कृष्ण चारा गांव में गौवे चराने से तथा जंगलों में चलने फिरने से अब तक थक गए हैं। मैं देख रहा हूं कि वह बहुत थक गए हैं, अतः अपने घर में विश्राम करते हुए उनके सिर को तो मैं सहलाता हूं, और सुबह तुम तो उनकी झाड़ों की बारिश कर दो। एक भक्त ने बलदेव के निजी सौंदर्य का वर्णन स्वीकार किया, मैं बलराम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, जिनका सौंदर्य उनके गालों का स्पर्श करने वाले कुंडलों से बढ़ जाता है। उनका मुखमंडल कस्तूरी से बनाए गए तिलक से सुशोभित है, उनका विशाल वस्त्र गुंजा की माला से सुशोभित है, उनका रंग शरद काले शुभ बादल के समान है, वे नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनकी वाणी अत्यंत गंभीर है, वे आदानुभूत है और उन्होंने प्रलंबा सुर को मारकर अपनी महान शक्ति का परिचय दिया है। मैं ऐसे पराक्रमी बलदेव की शरण लेता हूं। कृष्ण के प्रति बलदेव का स्नेह सुबह के इस कथन में व्यंजित हुआ है। हे सखा, कृपा करके कृष्ण से कह दे कि वे आज कार्यदेह के लिए ना जाए, आज उनका जन्मदिन है। जन्माष्टमी के दिन बोल रहे हैं बलराम जी, अतः मैं उन्हें माता यशोदा के साथ स्नान करने कराने जाऊंगा, अभिषेक होगा कृष्ण का। उनसे कह दो कि आज घर से बाहर कहीं ना जाएं। इससे प्रकट है कि कृष्ण के अग्रज बलराम किसी वात्सल्य प्रेम से कृष्ण की देखभाल करते थे। तो इस प्रकार इन रसों का आदान प्रदान रहता है, अलग अलग रसों का आदान प्रदान रहता है बलराम जी। और ये है अध्याय 40, अध्याय फर्श नहीं है, ये है अध्याय, इसका अध्याय कृष्ण के वात्सल्य। यहां पर श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि कुछ विद्वानों के अनुसार अभी तक जिन तीन रसों दास्य सख्य तथा वात्सल्य का वर्णन हुआ है वे कभी कभी मिश्रित हो जाते हैं, जैसे हमने पहले बताया मिश्रित रस होते हैं। बलराम के सख्य भाव दास्य तथा वात्सल्य से मिश्रित है, इसी प्रकार कृष्ण के प्रति राधे निश्चित का आकर्षण भी वात्सल्य तथा दास का मिश्रण है। कृष्ण के नाना उग्र सेन दिव्य रस दास तथा वात्सल्य प्रेम का मिश्रण है। वृंदावन की समस्त सयानी गोपियों का स्नेह वात्सल्य दास तथा सत्य भाव का मिश्रण है। तो इस प्रकार अलग अलग भक्तों के बारे में बताया जाता है। ये है रसों का मिश्रण, आगे और वर्णन किया गया है। एक बार श्री कृष्ण श्रीधावन को बलराम के साथ लड़ते समय लाठी चलाते देख रहे थे। बलराम गदा युद्ध करने में कुशल थे और उन्होंने अपनी गदा से लंबा सूर का बल भी किया था। जब कृष्ण देखा कि बलराम एक छोटी सी लाठी धारण करने वाले श्रीधावन से हार गए हैं तो वे हर्षित हुए और श्रीधावन को बड़े आश्चर्य से देखने लगे। इस उदाहरण से अद्भुत सख्य तथा वीर रसों का मिश्रण है। इस सख्य तथा वीर रस अंग है और अद्भुत रस अंगी है। तो वीर रस दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो कई प्रमुख रसों के साथ कई गौण रस भी पाए जाते हैं। प्रमुख यानी कि जो मुख्य रस है, पांच मुख्य रस बताए गए हैं। और मुख्य रस कौन कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। और सात जो है वो गौण रस है। कौन कौन से गौण रस बताए गए? वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और कारुण्य रस। और
अद्भुत हो गया,
अद्भुत हो गया, क्रोध प्रकट रौद्र रस। तो इस प्रकार ये बारह रस हैं। ये बारह रस पाए जाते हैं इन बारह वर्णों में। ये द्वादश वन जो है ब्रजमंडल में, द्वादश वन द्वादश वन है, बारह वर्णों में बारह रस पाए जाते हैं। तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है तो जो इन बारह वर्णों में बारह रसों का आस्वादन करता है परिक्रमा करते हुए, फिर वो संसार के आकर्षण से आकर्षित नहीं होता, वो संसार में आकर्षित नहीं होता। तो ये सारे रस बारह रस विकृत रूप में संसार में दिखाई पड़ते हैं। इस संसार में सारे के सारे रस है लेकिन विकृत रूप में है और हम लोग बद जीव इन्हीं रसों की तलाश में है लेकिन हमें रस मिल नहीं रहे, इसलिए हम बार बार 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं इन्हीं रसों की तलाश में। और ये रस हमें मिलेगा ही नहीं संसार में। ये कृष्ण भक्ति का रस हम तुम्हें कभी मिलेगा जब हम लोग भारतीय लीला में प्रवेश करेंगे, तो वहां जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर घटना और बताते हैं आपको चैतन्य भागवत से, जो कि यहाँ पर दशम स्कंध से तो नहीं है लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है। ये शिवास आंगन में है ये घटना घटी है। शिवास आंगन आज जानते हैं कहाँ पर है, जो पीठ के बिल्कुल पास है। और शिवास आंगन में शिवास पंडित के घर पे बहुत सारी लीला है। तो ये लीला चल रही थी महाप्रकाश लीला और उस समय घटना घटी। एक दिन शची महा ने स्वप्न में कुछ देखा, उसे उन्हें एकांत में पुत्र विश्वंबर से कहने लगी, विश्वंबर आज मैंने शेष रात्रि में एक स्वप्न देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 वर्ष के बालक होकर आपस में लड़ते झगड़ते हुए दौड़ते फिर रहे, फिर तुम दोनों श्री ठाकुर मंदिर में घुस गए। तो कृष्ण बलराम जी का विग्रह था घर में और वहां घुस गए और राम कृष्ण को हाथों में लेकर बाहर निकल आए। तो तुमने ने क्या किया? राम कृष्ण को लेकर बाहर आ, तो हमारे मंदिर में गौत आए भी है और कृष्ण बलराम के नित्यानंद के हाथ में थे कृष्ण और तुम्हारे हाथ में बलराम थे, फिर मेरे सामने ही तुम चारों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो झगड़ा क्या था सुने था? ठाकुर श्री राम कृष्ण क्रोध में भरकर बोले, तुम दो ढोंगी कौन हो, निकल जाओ बाहर। किसने बोला ये?
कृष्ण बलराम।
कृष्ण बलराम बोला। अब कृष्ण बलराम आ गए आपके पिछले साल यहां पर। तुम दो ढोंगी कौन हो, निकल जाओ बाहर, ये घर बार ये संदेश दूध दही आदि सब उपहार हम दोनों के हैं। तब विचार ने कहा, अरे विचार को नहीं जाओ बोला, बोला बेदिन बीत गए जब तुमने दूध दही मक्खन लूट लूट कर खाया था घरों में जाकर, वालों का राज्य गया, वालों का राज्य गया اب تو گھروں کا کردار ہے، اس لیے اپنے کو پہچانو اور چھوڑو ہماری ان سب بھیٹ پوجا کو، یعنی راضی خوشی نہیں چھوڑو گے تو مار کھاؤ گے، ہم تمہیں لوٹ کھائیں گے، دیکھیں کون بچاتا ہے تمہیں۔ اس پر رام کشن بولے، اچھا اب ہمارا دوست نہیں مانا، تم دونوں بھنگیوں کو اب یہی باہر کر ہی چھوڑیں گے۔ کرام بول رہے ہیں، مجھے کسی کی دہائی ہے تو ایسا نہ کروں دو۔ اس پرکار نجات کے اوپر گرجتے ہوئے بلرام نے کہا، پھر نجات جی بولے، تیرے کرشن کا مجھے کیوں کیا ڈر ہے، میرے ایشور تو گوڈ چندر وشوکر ہے۔ اس پرکار چاروں جنے تم لڑ جھڑ رہے تھے اور ایک دوسرے سے چھین چھین کر بھوجن کھا رہے تھے، کوئی کسی کے ہاتھ سے چھینا چھپی کر لے جا رہا تھا تو کسی کوئی کسی کے منہ سے بھوک ملا کر کھا رہا۔ بیٹا، اتنے میں نتیا نے پکار کر مجھے کہا، ماں مجھے کھانے کو تو بڑی بھوک لگی ہے۔ اس کے اتنا کہنے پر میں جاگ پڑی، میرے تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے یہ سب تمہیں سنا رہے ہیں۔ تو سچی بات، اس پرکار میں سپنا دیکھتے تھے آنگن میں، اور ماتا سوتن کو سن کر بشمر کو حاصل ماتا سے ودو بچن کہنے لگے، مادا تم نے بڑا ہی شبھ سوتن دیکھا ہے، میرے پیچھے یہاں کسی کو سنا سنا نہیں دینا، دیکھ تو دیکھا ہے کہ وہ کی سامگری سے آدھی سامگری ڈوب جاتی ہے۔ میں نے یہ بات دیکھا ہے، لجا کے بارے میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی، تمہارے بہو کے اوپر میرے من میں کچھ سندے تھا، مجھے ایسا لگا کہ کچھ شکریہ لے جاتے ہیں، میں آج وہ ہو گیا، اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ لوگ لے جاتے ہیں۔ تو اس پرکار یہ پرسنگ آتا ہے چیتنیہ بھاگوت میں، اور یہ طریقہ ہے بھگوان کی رام میں پرویش کرنے کا، برج میں پرویش اکرم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نتیانند پربھو کی کرپا چاہیے۔ بلرام جی کلیوگ میں نتیانند پربھو کے روپ میں آتے ہیں اور بہت زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ نتیانند کو کیا کرتے ہیں، کلیوگ میں کرشن پریم پردان کرتے ہیں، پریم کا وتر کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا مندر میں آئیں اور پھر ہم پرشان کرتے ہیں آپ سب سے آئیے۔